सूरत आला, जो बड़े बड़े मजमों में अल्लाह के नबी सूरतें पढ़ते थे उसमें सूरत आला और सूरत गाशिया थी। ईद की दो रकतों में, जुमे की रकतों में, वितर की पहली दो रकतों में अल्लाह के नबी ये पढ़ते थे। और मुफस्सरीन कहते हैं बेसिकली कि जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े मजमों में पढ़ते हैं ना, उसके अंदर कोई तस्कीरी नुक्ता होता है और उसमें कोई आखरत की बात है। आइए ढूंढते हैं। और ये अलाला क्या है? अल्लाह का नाम। पीछे कितने पढ़े हैं? फातिर, रहमान और अलाला। इस पे हदीस भी है, सब्बिह इस्मा रब्बिका अलाला और हलता का हदीसुल गाशिया। ये अल्लाह के नबी जुमे और ईदैन की नमाज़ों में पढ़ते थे। मुस्लिम की रिवायत है 2028, सब्बिह इस्मा रब्बिका अलाला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़क़दा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहू ग़ुस्सा नहवा। 1 से 19 आयतें। अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान करो, जिसने पैदा किया और सही सालम बनाया, और जिसने ठीक ठाक अंदाज़ा किया फिर राख दिखाई, और जिसने ताज़ा घास पैदा की फिर इसने इसको सुखा कर स्याह कूड़ा कर दिया। हम तुझे पढ़ाएंगे फिर तू ना भूलेगा। ये किसको कहा जा रहा है? मुझे भी और आपको भी शौक आ रहा है एज अ स्टूडेंट। वैसे आप बहुत पढ़ते हैं, मेरी इस बात से कोई ये ना समझे कि आप नहीं पढ़ते, आप बहुत कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह, पर एज अ स्टूडेंट पढ़ना। अल्लाह कहते हैं, नबी को कह रहे हैं कि आप बेफिक्र हो, हम आपको सिखाएंगे। शुरू में लगता है मुझे कुछ नहीं आएगा, फिर ऐसा ऐसा ऐसे लगता है आप कुछ नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। मगर जो कुछ अल्लाह चाहे वो जाहिर और पोशीदा को जानता है, हम आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे, तसल्लियाँ और दिलासे। तो आप नसीहत करते रहें, और अगर नसीहत कुछ फ़ायदा दे तो डरने वाला तो नसीहत लेगा, हाँ बदबख्त इससे गुरेज करेगा, जो बहुत बड़ी आग में जाएगा फिर क्या हाल होगा उसका, ना वो उसमें जिएगा और ना वो मरेगा, बल्कि हालत निज़ाम में पड़ा रहेगा। कभी किसी को देखा कि जिसकी रूह यहाँ अटकी हो और जान ना निकल रही हो? ये है वहाँ की कहानियाँ। इसके बरक्स, कद अफलह मन तज़क्का वज़क्कर इस्मा रब्बिही फ़सल्ला, बेशक उसने फलाह पाई जो पाक हो गया और जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज़ पढ़ता रहा। लेकिन अक्सरियत का हाल क्या है? बल तू से रून अल हयात दुनिया, लेकिन तुम तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुन वअबका, और आखिरत बहुत बेहतर और बहुत बाकी रहने वाली है। ये बातें पहली किताबों में भी हैं, यानी इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में। हम क्या चाहते हैं अपने लिए? देखिए, ये दुनिया की मसरूफियात हैं जो हमें वक्त नहीं देती। कम कीजिए, बच्चों के इतने लाड़ देखने की ज़रूरत नहीं, घर को इतना सजाने की ज़रूरत नहीं, जो है अल्लाह का शुक्र कीजिए और अपना फालतू वक्त, एक्स्ट्रा वक्त अल्लाह के दीन को दीजिए, अल्लाह के बंदों को दीजिए। क्या पता चला कि नसीहत लेने वाले लोग कौन होते हैं? जो खशियत इलाही वाले दिल होते हैं, जो अपने दिल से शिर्क और नाफरमानी की गंदगी धोना चाहते हैं। आपने मैंने क्या करना है कि यकीन रखना है कि अल्लाह के सिवा सब फ़ानी है, यकीन रखना है कि अल्लाह पोशीदा और ज़ाहिर जानने वाला है। नसीहत करनी है और तज़किया नफ्स करना है। आगे सूरत गाशिया क़यामत के नामों में से एक और नाम है, 26 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन दुरी। 26 आयात हैं इसके अंदर, एक रुकू में से, जो हम देखेंगे अभी। क्या तुझे भी छुपा लेने वाली कियामत की कुछ खबर पहुंची है? उस दिन बहुत से चेहरे जलील होंगे और मेहनत करने वाले थके हुए होंगे। ये वो मेहनत है जिस पे कोई जजा नहीं मिलने वाली। दुनिया में बेकार कामों में की हुई मेहनत सब ज़ाया हो जाएगी। अक्सर लोग अपनी जवानी की चीज़ें देखते हैं, कहते हैं हम अपने हाथ से कढ़ाइयाँ करते थे, ये कुशन मैंने बनाए, ये बेड सेट बनाए, ये दुपट्टा सिया, कमीज सी, ये किया वो किया, चली गई सब चीज़ें बाकी। और वो वक्त जो आपने अल्लाह के दीन को सीखने सिखाने और बंदों की खिदमत में लगाया, कल एक एक का बेहतरीन बदलाता होगा इंशाल्लाह। दहकती भी आग में वो जाएंगे, नहायत गर्म चश्मे का पानी इनको पिलाया जाएगा, और इनके लिए कांटेदार दरख्तों के सिवा और कुछ खाना ना होगा, जो ना मोटा करेगा ना भूख मिटाएगा। बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ा और आसूदा हाल होंगे, अपनी कोशिशों पर खुश होंगे। अल्लाह आपको उनमें कर दे। बुलंदों वाला जन्नतों में होंगे, जहाँ कोई बेहुदा बात वो ना सुनेंगे, जहाँ बहता हुआ चश्मा होगा और इसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे और पीने के बर्तन रखे हुए होंगे, और कतार में लगे हुए तकिए होंगे और मखमली मसनदें फैली हुई होंगी। क्या यूंटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं और आसमान को कि किस तरह ऊंचा किया गया और पहाड़ों की तरफ के किस तरह से गाड़ दिए गए और ज़मीन की तरफ के किस तरह बिछाई गई। बस आप नसीहत कर दिया करें, क्योंकि आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं। आप कुछ इन पर दारोगा भी नहीं। हाँ, मगर जो शख्स रूगर्दानी करे और कुफर करे, इससे अल्लाह बहुत बड़ा अजाब देगा। और असल में एंड पे होना क्या है? इन्ना इलैना इयाबहुम थुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। बेशक हमारी तरफ इनका लौटना है, फिर बेशक हमारे जिम्मे है इनसे हिसाब लेना। यहाँ दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा। हिसाब तो होगा, जितनी भी नेमतें इस्तेमाल करते हैं हिसाब तो होगा। खुद कर लें हिसाब, साथ साथ उसको अल्लाह के रस्तों में लगा कर तो भी ठीक है। अच्छे काम कर लें, आपकी नेमतों का हिसाब नहीं होगा। गाड़ी का हिसाब कैसे हो? आप तो अच्छे रस्तों में निकली, आपने खाना खाया बेहतरीन अच्छा, उसके बाद आपने अल्लाह को राज़ी किया, इबादत की, बंदों की खिदमत की, हिसाब नहीं होगा। हिसाब उन चीज़ों का होगा। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप देखिए, कुछ लोग बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, वो कौन कौन है? आप में कोई भी नहीं बोलेगा, माशाल्लाह। अच्छा, कुछ कुछ नहीं खाते और कहते हैं मैं खाती तो कुछ नहीं, मोटी होती हूँ। अच्छा, जो खाते बहुत हैं और मोटे नहीं होते, दो वजूहत होती हैं उनमें। नंबर एक, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है, बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता खाना, बस फौरन हज़म हुआ और निकल गया। दूसरी वजह क्या है कि वो जितना खाते हैं उससे ज़्यादा मूवमेंट भी करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसके बरक्स कुछ लोग खाते हैं और बैठ जाते हैं, पकौड़ा, फिर समोसा, फिर कचौरी, अल्लाह अकबर। अच्छा, वो खाते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं करते। डॉक्टर कहते हैं कि आप जितना इनटेक लेते हैं ना कैलोरीज़ का, 2000 कैलोरीज़ का एक एवरेज रेशियो देते हैं। अगर आपने 2000 कैलोरीज ली, इनहेल की ना बॉडी के साथ पूरे दिन में, तो आप 222 या 2500 यूज़ कर लें तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। बिल्कुल इसको इधर समझिएगा, क़यामत के दिन वो लोग जिन्होंने नेमतें ली और साथ ही शुक्र कर कर के बराबर पे आ गए, उनका हिसाब नहीं होगा। हिसाब पता किनका होना है? जिन्होंने डिपॉजिट करके रखा हुआ है, छुपा छुपा के सोना ज़मीन में और दीवारों में टांगा हुआ है, जिन्होंने दौलत को कहीं किसी ऐसे नाम पे रखा हुआ है जो किसी के भी काम नहीं आ रही, उसका हिसाब है। हर वो नेमत जो किसी के भी काम नहीं आ रही, ना आपके ना किसी और के, उसका हिसाब होगा, और बड़ा सख्त हिसाब होगा। अल्लाह ताला हमें नेमतों की कदर करने वाला बना दे। फिर इसी तरह से कुफार की रसवाई का दिन है, उस दिन काफिर का चेहरा जिल्लत के साथ झुका होगा, सबके सामने पस्त और जलील होगा, और उसके लिए क़यामत का दिन मुशक्क़त का दिन होगा। आपने मैंने क्या करना है? कोशिशें करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला कोशिशें देखता है। कायनात पे तदब्बुर करना है, नसीहत करना नहीं छोड़ना। सूरत ग़ाशिया का पैगाम क्या है? मज़ाहिर फितरत को गौर से देखो। वो कहते हैं ना, खोल आँख देख, फलक से उबरते सूरज को देख। इनमें से एक एक चीज़ अल्लाह की निशानी है और उसके खूबसूरत अल-खालिक और अल-मालिक होने का नमूना है। आगे जी, सूरत फजर 5 नमाज़ों में से एक नमाज के नाम पे सूरत है। औकात में से बहुत से औकात हैं जिसमें से आगे भी कुछ नाम आएंगे, और एक वक्त फजर का वक्त है। 30 आयात है इसमें, 89 नंबर की सूरा है, और मुफस्सरीन कहते हैं कि इधर फजर और अगली 2-3 आयतों जैसे मुराद ज़िल हज की 10 सुबह, यानी 10 दिनों का तذکرہ है। वल फजरी वल लयाली नशरी व शफ़ी वल वत्री वल लैली इज़ा यस्र, आयत नंबर 1 से 30। कसम है फजर की और 10 रातों की जुफ्त और ताक की, और रात जब चलने लगे, क्या इसमें अक्लमंदों के वास्ते काफ़ी कसम है? क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आदियों के साथ क्या किया, सतूनों वाले इरम के साथ, जिसकी माने कोई कौम मुल्कों में पैदा न की गई, और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे, और फिरौन के साथ जो मेघों वाला था। इन सबों ने शहरों में सर उठा रखा था और बहुत फसाद मचा रखा था। आखिर तेरे रब ने इन सब पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। इसको हाईलाइट करना चाहे तो कर लें, फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अजाब, अजाब का कोड़ा उठा रखा। और फिर क्या हुआ? यकीनन तेरा रब तो घात में है, इन रब्बक लबिल मिरसाद, कभी गलत काम करें और बच जाए ना तो इस आयत को याद रखें कि वो देख रहा है कि इसको अभी नहीं पकड़ना, वहाँ जाके आगे पकड़ना है। इंसान का ये हाल है कि जब इसे इसका रब आजमाता है और इज़्ज़त और नेमत देता है तो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़तदार बनाया, और जब वो इसको आजमाता है, इसकी रोज़ी तंग कर देता है, तो वो कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी तौहीन की और जलील किया। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि बात तो यह है कि तुम ही लोग यतीम की इज्जत नहीं करते और मिस्कीन को खिलाने और एक दूसरे को खिलाने की रग़बत नहीं दिलाते, और मुर्दों की मीरास यानी माले विरसा समेट समेट कर खाते हो और माल को जी भर कर अजीज़ रखते हो। यकीनन जब ज़मीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तेरा रब खुद भी आ जाएगा और फरिश्ते सफ़े बांध कर आ जाएंगे, और जिस दिन जहन्नुम भी लाई जाएगी और उस दिन इंसान को पता चलेगा, क्या हाईलाइट करना चाहें तो कर लें, यौम इज़ी यतज़क्करुल इंसानु वअन्ना लहु ज़िक्रा। वो कहते हैं ना कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते हैं, ये बात है इसमें, उस दिन इंसान को समझ आएगी, मगर आज इसके समझने का फ़ायदा क्या? स्टूडेंट उस दिन किताब खरीदे जिस दिन पेपर पूरे हो जाएं, तो क्या फ़ायदा अगर नंबरों के लिए किताब लेनी थी तो? वो कहेगा कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ पेशगी सामान किया होता। जी यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, बस आज अल्लाह के अजाबों जैसा अजाब किसी का ना होगा, ना इसकी कैदो बंद जैसी किसी की कैदो बंद होगी। जी सारी ज़िंदगी खुले फिरते रहे, आज रस्सियों में जकड़े जाएंगे। मोमिन की रूह खुशी खुशी निकलती है, फाजिर की रूह ऐसे निकलती है, हाय बच्चों पकड़ो बचाओ मुझे, मेरे साथ होगा। पीछे सूरह क़यामत में पढ़ा ना कि उसको गम लगा होगा कि आज तो मेरे साथ कमर तोड़ मामला होने वाला है। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, 100 दिन चोर के एक दिन शाह का। सारी ज़िंदगी हमने अपनी मर्जियाँ कर ली, कर लें और कर लें, नहीं अच्छी लगती बातें अल्लाह की ना माने, मौत के वक्त को याद कीजिए। और आगे है वो आयत जिसके इंतज़ार में मैं डे वन से थी, ख़ास तौर पे इस थीम के साथ, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जिला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। है इत्मीनान वाली रूह, तो अपने रब की तरफ लौट चल इस तरह के तू इससे राजी और वो तुझसे खुश, बस मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में चली जा। ए अल्लाह हमारे कान तरस रहे हैं इस पुकार को सुनने के लिए, हमें मौत के वक्त ये पुकार ज़रूर सुनवाना। और ये किसको मिलेगी आपको बताए, जिसने ज़िंदगी में नफ्स को नफ्से मुतमईना बना लिया। ये भी लिख लें, ये जो जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेने वाली बात है ना, उसके साथ भी इसको समझ लीजिए। आपके मेरे ऊपर बड़ी हद तक ये बात डिपेंड करती है कि हम अपनी ज़िंदगी में मुतमईन रहें या ना रहें। बस लोग सारी ज़िंदगी हाइपर रहते हैं, परेशान दुखी, जान के रब जाती कई मुसीबतें जान को लगाई हैं, तो अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान लाइए। हर वो एक्टिविटी निकाल के फेंक दे जो आपको बदमज़ा करे, बदमिजाज करे, आपकी बीमारी को बढ़ाए, आपकी थकन को बढ़ाए, कुछ करें ना करें लेकिन खुश रहें। और ये आयतें मौत के वक्त आते हैं मोमिन के। शुरू की आयत में जुलहिज्जा की इब्तदाई 10 रातों का जिक्र था, जिनमें किए हुए अमाल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हैं, यहाँ तक कि यमल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी अफसल हैं। फिर थोड़े दिल इंसान की निशानियाँ हमने देखी आयत 15-16 में, नेमत मिलने पर तकब्बुर करता है, नेमत को अपने लिए बायस इकराम समझता है, अपनी काबिलियत का नतीजा समझता है, आजमाइश को अपने लिए जिल्लत और रब की नाराज़गी का सबब समझता है, और अल्लाह ताला से बदगुमान होता है। हमने ये सब कुछ नहीं करना, पिछली कौमों के साथ जो अल्लाह ने मामला किया उससे नसीहत लेनी है, यतीम की इज्जत करनी है, मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत दिलानी है, और माल से मोहब्बत नहीं करनी। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे जिस सूरत बलद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद वअंतहिल्लुम बिहाज़ल बलद ववालिदिन वमा वलद लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, 1 से 20 आयत, रुकू नंबर 15 है। नेकी और बदी दोनों का रास्ता वाज़े है, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ और आपके लिए इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है, अर कसम है इंसानी बाप और औलाद की, यकीनन हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया है। क्या ये गुमान करता है कि ये किसी के बस में नहीं? कहता फिरता है कि मैंने बहुत कुछ माल खर्च कर डाला, क्या यूँ समझता है कि किसी ने उसे देखा ही नहीं? क्या हमने इसकी दो आंखें नहीं बनाई? इसको हाईलाइट करें। अलम नजअल्लहु ऐनैन वलिसानं वशफ़तैन वहदैनाहुन नजदैन। क्या वो यूँ समझता है कि किसी ने उसे देखा ही नहीं? क्या हमने इसकी दो आंखें नहीं बनाई, ज़ुबान और होंठ नहीं बनाए? हमने दिखा दिए इसको दोनों रास्ते, कौन से खैर और शर के। बस इससे ना हो सका कि घाटी में दाखिल होता। और तू क्या समझा कि घाटी क्या है? किसी गर्दन जनी गुलाम और लौंडी को आज़ाद करना, या भूख वाले दिन खाना खिलाना किसी रिश्तेदार यतीम को, या खाकसार मिस्कीन को। फिर इन लोगों में हो जाता है जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र की और रहम की वसीयत करते हैं, यही लोग हैं दाएं हाथ वाले, खुश बख्ती वाले। और जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफर किया, ये कम बख्ती वाले हैं, इन्हीं पर आग होगी जो चारों तरफ से घेरी होगी। तो दो किरदार हैं इन आयात में। सआदतमंद लोगों की खसूसियात क्या हैं? गुलाम आज़ाद करना, भूखों को खाना खिलाना, यतीम मिस्कीन और गरीब रिश्तेदारों की मदद करना, दूसरों को सब्र और रहम की तलकीन करना। और रिवायत है इब्ने माजा की 1844 सलमान बिन आमिर से, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मिस्कीन और फ़कीर को सदका देना सिर्फ सदका है, और रिश्तेदार को सदका देना दो चीज़ है, एक सदका और दूसरी सिला रहमी। क्या सीखा? कि दीन की राह में मुशक्क़तें उठानी है। बोलिए, थके तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को किसी के काबू में समझना है, और वो कौन है? अल्लाह के। नेमतों की शुक्रगुजारी करनी है। रिश्तेदार को फाके के दिन खाना खिलाना है। सूरत शम्स 15 आयतें हैं, 91 नंबर की सूरह, अब सूरज के नाम पे। और अब आप देख रहे हैं कि पीछे सूरत कमर गुजरी 27वें पारे में, यहाँ शम्स सूरज, क्या निशान है इसमें देखेंगे। वह शम्स व दुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा व नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यक्षाहा वस्समाई वमा बनाहा। नफ्स को पाक कर लो या खाक में मिला लो। आयत 1-15। कसम है सूरज की और इसकी धूप की, कसम है चांद की जबकि इसके पीछे आए, कसम है दिन की जब सूरज को नुमाया करे, कसम है रात की जब इसे ढांप ले, कसम है आसमान की और इसके बनाने की, कसम है ज़मीन की और इसे हमवार करने की, कसम है नफ्स की और इसे दुरुस्त करने की, फिर समझ दी इसको बुराई की और बचकर चलने की। जिसने इसे पाक किया वो कामयाब हो गया, जिसने इसे खाक में मिला दिया वो नाकाम हुआ। कौम समूत ने अपनी सरकशी के बायस छुटलाया, जब इनमें इनका एक बदबख्त खड़ा हुआ। इन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह की ऊँटनी और इसके पीने की बारी की हिफाजत करो। इन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर इस ऊँटनी की कूंछें काट डाली। बस इनके रब ने इनके गुनाहों के बायस इन पर हलाकत डाली और फिर हलाकत को आम कर दिया और इस बस्ती को बर्बाद कर दिया। वो नहीं डरता इसके तबाह को अंजाम से। क्या पता चला कि कामयाब इंसान कौन है? कद अफलाहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाबा मन दस्साहा। तो जो शिर्क से पाक होगा, जो नाफरमानियों से बचेगा, जो अख़लाक़ी बुराइयों से पाक होगा, वो कामयाब होगा। इसके बरक्स बुराई का अज़ाब क्या है? किसी एक इंसान को बुरे अमल को ना रोकने से पूरी कौम इस बुराई में शामिल हो जाती है। तो आपने मैंने क्या करना है? हमने लोगों को इंशाल्लाह उनकी बुराइयों से हर मुमकिन तरीके से रोकना है, और ऐसी कौम जिसमें कि कोई बुराई फैल जाए हमने उसका हिस्सा नहीं बनना। इसी तरह और क्या करना है? अपने नफ्स को पाक करना है। कैसे पाक करता है बंदा? तज़किया का बेहतरीन तरीका कुरान का पानी, इससे धोइए अपने आप को। अपने काम के अंजाम से डरना है, अल्लाह की रज़ा को पाना है। आगे सूरत लैल, लैल कहते हैं रात को, और 21 आयात हैं इसमें, 92 नंबर की सूरा। वल्लैली इज़ा यक्षा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ अज़्ज़कर वल्उन्था। परहेज़गार के लिए आसानियाँ और झूठे बखील के लिए सख्तियाँ हैं। टॉपिक इसका, कसम है रात की जबकि वो छा जाए, और कसम है दिन की जब वो रोशन हो, और कसम है ज़ात की जिसने नर और मादा को पैदा किया। यकीनन तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। जिसने दिया अल्लाह की राह में और डरा अपने रब से और नेक बात की तस्दीक करता रहा, तो हम भी इसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। लेकिन जिसने बखीली की और बेपरवाही बरती और नेक बात को झुटलाया, तो हम भी इसकी तंगी और मुश्किल का सामान मुयस्सर कर देंगे। इसका माल इसे ऊंधा करने के वह कुछ काम ना आएगा। बेशक राह दिखा देना हमारा जिम्मा है और हमारे ही हाथ में आखिरत और दुनिया है। मैंने तो तुम्हें शोले मारती हुई आग से डरा दिया, जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने झुटलाया और इसकी पैरवी से मुंह फेर लिया। और इससे ऐसा शख्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार होगा, जो पाकी हासिल करने के लिए अपना माल देता है। बड़ा अहम नुक्ता है, ज़कात का माल बाकी माल को पाक कर देता है। और इससे ऐसा शख्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार होगा, जो पाकी हासिल करने के लिए अपना माल देता है। किसी का इस पर कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दिया जा रहा हो, यानी बग़ैर किसी फ़ायदे की उम्मीद के देता है, बल्कि सिर्फ अपने परवरदिगार बुजुर्ग और बुलंद की रज़ा चाहने के लिए। यकीनन वो अल्लाह भी अन करीब रज़ामंद हो जाएगा। वला सऊफ़ा यरदा, दुआ कीजिए अल्लाह तो हमसे भी राज़ी हो जाना। क्या सीखा? भलाई की तस्दीक करनी है, बुखल नहीं करना, माल को पाक करने के लिए अल्लाह की राह में लगाना है और रब की रज़ा चाहनी है। मुहासबा करते हैं, क्या मैं खैर के कामों में खर्च करने का शौक़ रखती हूँ? क्या मैंने किसी मुसीबत ज़दा पर बेगरज होकर खर्च किए? क्या मैं बदला उतारने के लिए दूसरों पर खर्च करती हूँ? अल्लाह हमें बग़ैर किसी उम्मीद के खर्च करने वाला बना दे। आगे जी सूरह दोहा, 11 आयतें हैं टोटल, इसमें 93 नंबर सूरह। इसके बारे में रिवायत आती है बुखारी में 4950। अल्लाह के नबी बीमार हो गए या 2-3 रातों तक तहज्जुद के लिए ना उठे। फिर एक औरत जो अबू लहब की बीवी थी, औरा उसका नाम था, कहने लगी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। नऊज़ुबिल्लाह, जिब्राइल को शैतान कह रही है जो वही लेकर आते थे। 2 या 3 रातों से देख रही हूँ कि तुम्हारे पास वो नहीं आया। इस पर अल्लाह ने आयत नाजिल की, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दका रब्बुका वमा कला, आखिर तक। और आपको था कि चच्ची थी। अपने ज़्यादा दुख देते हैं कभी कभी जब आप अल्लाह के रास्ते में उनको अपने साथ लेकर नहीं चलते। आइए देखते हैं अल हकीम की हिकमत और अल वदूद की मोहब्बत। आयत 1 से 11, कसम है चाश्त के वक्त की और कसम है रात की जब छा जाए, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हो गया है। यकीनन तेरे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर होगा। इसको हाईलाइट करें, वला सौफ़ा यरदा। वल्लाही ये सिर्फ नबी के लिए नहीं है, आज भी अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं ना, तो आपका हर आने वाला दिन पिछले दिन से अच्छा होगा। वला सौफ़ा यरदा। और मौत का दिन तो बड़ा ही खूबसूरत दिन होगा। हदीस में आता है कि सबसे खूबसूरत चीज़ दुनिया में मोमिन की मौत है। मोमिन अपनी मौत कैसे इंतज़ार करता है? जैसे दुनियादार किसी दौलत माल या दुनिया की नेमत का इंतज़ार करता है। उसको मलकुल मौत रब से मिलाने वाला पयाम्बर दिखता है, तुझे तेरा रब बहुत जल्द इनाम देगा। वला सौफ़ा युती का रब का फतरदा। इस पे तो जितना रो लें जितना रो लें। लोग सोचते हैं अच्छा दीन सीख लो, दीन पे आ जाओ, कुछ आखरत अच्छी हो जाएगी, ये सोच के आते हैं ना, सवाब हो जाएगा, कोई सदका जारिया बन जाएगा, मुर्दे बख्शे जाएंगे। सब बातें झूठी, ये अधूरी हैं, छोटी 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 हैं। सबसे पहले आपको जो इधर मिलेगा, आपकी दुनिया खूबसूरत होगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें वो दूंगा जिसको देकर तुम खुश होगे। शर्त एक है, पहले तुम तो दो ना, आप अपना सब दे दें, अपना आप ही दे दें ना। इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, अपना सारा वक्त दे दें, अपना सारा माल दे दें, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, सारा वापस आएगा। ज़र्ब लग के, प्लस नहीं, ज़र्ब लग के आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तर्दा। नहीं यकीन तो ज़रा अपने माजी में झांको। अलम यजिद का यतीमन, क्या हमने आपको यतीम ना पाया? सोचिए, फिर आपको जगह ना दी। बापों वाले बच्चों को वो नहीं मिलता जो इस दुर यतीम को मिल गया। और तुझे राह भूला पाकर हिदायत ना दी, और तुझे नादार पाकर तवंगुर ना बना दिया। बस तू भी यतीम पर सख्ती ना कर, और न सवाल करने वाले को डांट डपट, और अपने रब की नेमतों को बयान करता रहे। वम्मा बि नेमति रब्बिका फहद्दिस। क्या पता चला अल्लाह की हर नेमत को शुक्र गुजारी के साथ इस्तेमाल करो, दिखावे के लिए नहीं, जलाने के लिए नहीं, तड़पाने के लिए नहीं। दीन की नेमत का भी इज़हार करो कि बंदों को फ़ायदा हो जाए। जहाँ किसी को बताने से फ़ायदा उसको बता दो, जहाँ किसी से छुपाने से फ़ायदा होता है उसको छुपा लो, लेकिन अल्लाह की नेमतों को उसके बंदों के साथ शेयर करो। क्या सीखा? रज़ा इलाही को पाने के लिए यतीम पर सख्ती नहीं करनी, साहिल को झिड़कना नहीं। यकीन रखना है कि बाद का दौर पहले दौर से बेहतर होगा, और अल्लाह की नेमतों को बयान करना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। अब इसी सूरत का जोड़ा, सूरत शर्ख, अलम नशरख, 8 आयतें हैं टोटल, 94 नंबर सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरख लक सदरक व वदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनकदा ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्री युस्रा, इन्ना मअल उस्री युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ारग़ब। कामरानियों की बिशारत और इबादात में मशक्क़त के सिले। क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया, आपका बोझ उतार ना दिया, जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी, और हमने आपका जिक्र खैर बुलंद किया। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर और अपने परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा। ये थे जी अल्लाह के नबी सल्लम पर एहसानात। आपका सीना मुबारक इस्लाम के लिए खोला, शरह सदर हुआ, रियल में भी आपका शरह सदर हुआ। दो दफ़ा आपका सीना खोल के काट के उसके अंदर से शैतान का हिस्सा निकाला गया, एक नबुवत की इब्तिदा में और एक मेराज के सफ़र से पहले। फिर आपके दिल को आबे जमजम से धुलवाया गया, आपको हर गुनाह से महफूज रखा गया, दीन की राह में मुश्किलात बर्दाश्त करने का हौसला दिया गया, और तबलीग और दावत में आसानियाँ फरमा दी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, दो दफ़ा इन्ना माल उसरी उसरा, इस माँ को देख लें बस। अमूमन हम पता क्या सोचते हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ, इन्ना बादल उसरी उसरा, यही सोचते हैं ना, अच्छा बेटा सब्र करो बाद में अच्छा हो जाएगा। गलत। माँ पता क्या, ये जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, वल्लज़ीना माँ हो साहबा कराम माइयत बिमा अहलो याल, साथ साथ चलेगा ज़िंदगी में, उसर फिर युसर, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, एक दिन तबीयत अच्छी एक दिन बुरी, एक खुशी का गुजर गया एक गम का। अल्लाह के नबी के पास फरिश्ता आया और उसने कहा कि अल्लाह चाहता है कि आपको पहाड़ सोने का बना के दे दे, इतनी दौलत आपके कदमों में निचावर कर दे। कहा नहीं, मेरा दिल करता है मैं एक दिन अच्छा खाऊं और मैं शुक्र करूं, और एक दिन मैं भूखा रहूं और मैं सब्र करूं। ये है माँ, लफ्ज़ माँ समझ रहे हैं ना। तो ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा कि आप एक दफ़ा बहुत खुश होंगे और एक दफ़ा बिल्कुल नाराज़ होंगे, ये चलता ही रहेगा। करना क्या है, इबादत में मेहनत और रब की तरफ तवज्जो रखनी है। और आगे सूरह 3 है जिसमें इंसान की खूबसूरत तरकीब का जिक्र है, 8 आयतें हैं टोटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। बेहतरीन अमाल वालों के लिए जज़ा और पस्ती में गिरने वालों के लिए सज़ा। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर की, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, फिर इसे नीचों से नीचा कर दिया। लेकिन जो लोग ईमान लाए और फिर नेक अमल किए तो इनके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म ना होगा। बस तुझे अब रोज़े जज़ा के जुटलाने पर कौन सी चीज़ आमादा करती है? क्या अल्लाह ताला सब हाकिमों का हाकिम नहीं है? है कि नहीं? आप यहाँ इस सूरत पे ज़रा सा गौर करें, ऐसे लगता है कुछ खाने पीने की बातें हैं। तीन बड़ी शरीयतें इधर इकट्ठी हो गई हैं, व तीन ही वज़ैतून, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश में ये दो फल थे, बैतुल लहम कहते हैं इसको, व तूरी सीनीन, हज़रत मूसा को नबुवत मिलने का मुकाम, और व हाज़ल बलदिल अमीन, ये मक्का जो बक्का है नबी सल्लम का जाए विलादत। तो तीन अम्बिया की मारूफात और उनकी मेमोरियल चीज़ों को बुनियाद बनाकर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम की बात की गई। अल्लाह हमें इसकी कदर की तौफीक दे। करना क्या, ईमान लाकर नेक अमल करने हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले अजर की उम्मीद रखनी है, और अपने फ़ैसलों में अल्लाह को हाकिम मानना है। सूरह 3 का पैगाम क्या है, कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, वो आदिल है, और उसके इंसाफ का तकाजा है कि क़यामत बरपा हो। اس کے بعد ہے جی پہلی وحی کا پیغام، سورت علق، 19 آیات ہے جس میں شروع کی 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ علم حاصل کرو اور سجدوں سے قرب پاؤ۔ 19 آیات ہیں شروع کی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر یعنی دولت مند دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے مجھے تو کسی سے لینا ہی نہیں پڑتا، میرے پاس تو بہت ہے، تو گویا کہ مجھے اللہ سے بھی نہیں لینا۔ کسی نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں دعا مانگنے کی، میرے پاس بہت ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے؟ ابو جہل کی طرف اشارے ہیں۔ جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے، نفس سلم ہے یہ۔ بھلا بتاؤ تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھو کہ اگر یہ چھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باس نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہوتا جا۔ بس جو دوق درے، یہ ہے ناسیہ۔ آپ کو پیچھے ایک آدھ دن پہلے سنایا نا، سورۃ الرحمن کی تفسیر میں بتایا تھا، یہ جو حصہ نا یہ متھا، اس کو ناسیہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہاں کیا کہتا ہے، یہاں سے بن نواسی کا لفظ تھا، وہاں جمع تھی، کیا ہم ان کے نواسی والا اقدام یہاں سے پکڑ کے نہ ان کو قدموں سے جھکائیں گے؟ نہیں جھکتے تھے، اب جھکو۔ اور یہاں لفظ ناسیہ، اور جھوٹی کیوں کہا جھوٹی ناسیہ؟ کیونکہ سائنس نے بتا دیا کہ اس حصے میں انسان کے جو سسٹم لگا ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنے پہ مائل کرتا ہے، تدبر، غور و فکر۔ اسی لیے جانوروں کا ماتھا بہت چھوٹا ہوتا ہے، بکرے بکری کو دیکھے اتنا سا ماتھا ہوتا ہے، اور چوڑے ماتھے والے بڑے اچھے ڈیسیزن میکر ہوتے ہیں۔ ابھی فوراً جا کے شیشے میں اپنا دیکھیں۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے والا بنائے، اور اپنا قرب دے دے سجدوں کے ذریعے۔ الذی علم بالقلم، پہلی وحی کا پیغام۔ قلم کا لفظی معنی ہوتا ہے تراشنا، قطع و برید۔ قلم علم کو محفوظ کرتا ہے، قلم کا علم ضائع نہیں ہوتا۔ انسان مر جاتا ہے مگر اس کا علم باقی رہتا ہے۔ عام انسانی تعلیم کے لیے ذریعہ قلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے فرشتہ مقرر ہوا۔ اور اسی طرح سے یہ یاد رکھیے کہ وہ قوم جس کو پہلا سبق قلم کا دیا گیا، آج اس کی پرس میں قلم ہی نہیں ہوتا، اس کا علم سے کیا تعلق ہے؟ اور اس پہ آپ سنیے، ایک ویڈیو لیکچر بھی ہے یوٹیوب پہ، ہے یہی ٹاپک، لکھ کے دیکھیں گے نا، پہلی وحی کا پیغام، تو پچھلے سال رمضان میں ایک ویڈیو لیکچر ہوا تھا، اس کو آپ سن لیں، 20 منٹ کا ٹوٹل لیکچر ہے۔ میں تو اس پہ بہت بات کرتی ہوں، جب تک ہم دین اور دنیا کا علم حاصل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب سائنس ٹیچر سائنس پڑھانے کے دوران بسم ربی کا کام نہیں کر دے گا نا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہر علم کے بعد اللہ سے جڑ جائے، یہ ہے گول کامیابی کا۔ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے، رب کے البصیر ہونے کا شعور رکھنا ہے، سجدے کر کے اللہ کا قرب لینا ہے، اور اس کے قرب کی خواہش بھی رکھنی ہے۔ سورۃ علق کا پیغام کیا ہے کہ اقرأ بسم ربی کا، اقرأ وربک الاکرم واسجد واقترب۔ اگر آپ نے ابھی تک قرآن پاک کو لفظی ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا تو یہ آپ کے لیے ہے، سبیل الجنہ ویب سائٹ پہ جا کر کھول کر مین پیج پہ آپ اس کا لنک کلک کریں، یا nurulquran.com/courses، اور یا پھر آپ واٹس ایپ گروپس میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا کورس ہے نور الانور۔ اگر آپ پڑھ چکے ہیں، ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو علم دیا، کسی ادارے انسٹیٹیوٹ سے آپ لفظ بلفظ ترجمہ کر چکے ہیں، اپنا کارڈ سرٹیفکیٹ دکھائیے، تو پھر آپ کو نور الانور میں داخلہ ملے گا، جو ٹیچر ٹریننگ کورس ہے۔ آگے ہے جی فیصلوں کی رات، سورۃ قدر، 5 آیتیں ہیں ٹوٹل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قرآن کی عظمت اور لیلۃ القدر کی اہمیت، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کو سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اترتے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے، عظمت والی رات لیلۃ القدر، قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ رات تنگ دکھتی ہے، اور اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں کیونکہ اس میں قدر والی کتاب اتری، عظمت والی کتاب نازل ہوئی، نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، الہامی کتابوں کی سردار قرآن کتاب نازل ہوئی، تمام راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل، فرشتوں کے سردار جبرائیل کا نزول ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ والی جو روایت ہے نا کہ خیر من الف شہر، اس کا بریک ڈاؤن کریں نا، اس کو دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سیکنڈ اس رات کا کئی گھنٹوں پہ آ جاتا ہے. اللہ ہمیں زندہ رکھے اور ہم اس کو لے سکے اگلے سالوں میں بھی. کیا سیکھا؟ لیلۃ القدر کی حقیقت سمجھنی ہے، قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور سورت بینہ کو پڑھنا ہے. میری فیورٹ سورتوں میں ایک سورت بینہ، میں ہر سال اس پہ کہتی ہوں کہ یوٹیوب پہ جا کر تدبر القرآن سیریز کھولیے، 30th پارہ ہے اس میں، بس سورت بینہ کی تفسیر سن لیں، 1 گھنٹے کی ہوگی آلموسٹ. آئیے آج دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. قرآن کے نزول کے بعد بس اب دو ہی گروہ ہیں، یا خیر البریہ یا شر البریہ، یہ تھی میں اس کا. اہل کتاب کے کفار اور مشرق لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے، وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں. اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے، انہیں ان کے سوا کوئی حکم نہ دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا. بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق یعنی مخلوق ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اس سے راضی ہوئے. کیا آگے آپ کا تھیم؟ رضی اللہ عنہ و رضوا. اور یہ کس کو ملے گا؟ ذالک لمن خشی ربا، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے. تو بہترین مخلوق کون؟ جو دل سے ایمان لائے، اطاعت گزار ہو، اعمال صالح کرے، وہ مومن جو ملائکہ سے بہترین ہیں. بدلہ ہمیشگی کی جنت اور رب کی رضا ہے. اللہ کے نبی کا وجود بینہ تھا، جو ابو بکر کو صدیق بنا گیا، اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ پیچھے ہو کے چھانٹ دیا. جب رسول آتا ہے نا کسی بستی میں تو وہاں سے لوگ چھٹ جاتے ہیں، پہلے سب گلے ملے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے مکہ میں دو شخصیات بڑی معروف تھیں، نیکی میں اور دو برائی میں. نیکی میں کون تھے؟ ابو بکر صدیق، اور دوسرے بولیے ولید بن مغیرہ، جس کا ذکر پیچھے پڑھ کر آئے ہم. دونوں بڑے جنرس تھے، لیڈر ٹائپ تھے، بڑے فیاض تھے. نبی آئے بینہ بن کر، ابو بکر صدیق نے جوائن کر لیا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ولید بن مغیرہ غصے میں تیوریاں چڑھا کے ادھر ادھر چلا گیا. پتہ چل گیا کہ ابو بکر ریئل میں جنرس تھے اور ولید بن مغیرہ بس رسمی کلامی نیکیاں کرتا تھا. اس کے برعکس دو اور کردار تھے، عمر اور ابو جہل، عمر بن خطاب اور عمر بن خشام. دونوں مشہور تھے معاشرے میں، عمر فاروق بن گئے اور عمر بن خشام ابو جہل بن گیا. پتہ کیا چلا؟ کہ عمر دل کے بڑے اچھے تھے، بس پوری صحبت اور اوپر ونیر تھی. کبھی آپ کو چیزیں کہ پرانی ہے لیکن آپ دھوئیں مٹی اتاریں صاف چمکتی ہے، نبی یہ کرتا ہے، آج یہ قرآن کرتا ہے یہ کام. جو کام نبی کی زندگی میں نبی کے ذریعے ہوتا تھا نا، आज के दौर में ये कुरान के ज़रिए होगा, और हो रहा है। तो क्या सीखा कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करना, उसकी इबादत करनी है, यकसू होना है, अल्लाह से हर हाल में राज़ी रहना है और अपने रब से डरना है। आगे जी सूरत जिलजाल या सूरत जलजला, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ाला लिंसानु मा लहा यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा। आपने बेसिकली सहाबा से पूछा, तुम जानते हो ये ज़मीन की खबरें क्या हैं? हाँ खबरें, उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया इसकी खबरें ये है कि इसकी पीठ पर यानी ज़मीन पर हर बंदे ने, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, जो कुछ किया होगा वो इसकी गवाही देगी और कहेगी इस बंदे ने फलां दिन ऐसा काम किया, और यही इसकी खबरें हैं। तिर्मिज़ी की रिवायत 3353, इन कुर्सियों ने क़यामत के दिन आपकी गवाही देनी है और मेरी भी इंशाल्लाह, कि इस कुर्सी पे बैठकर इन्होंने ये दौरे कुरान सुना और सुनाया था। अल्लाह में अच्छी अच्छी हुज्जतें कायम करने वाला बना दे। तो ज़मीन हमारे अमाल की गवाह है, ये मेन थीम है। जब ज़मीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी, इंसान कहने लगेगा इसे क्या हो गया। उस दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान करेगी, इसके इसलिए कि तेरे रब ने इसे हुक्म दिया होगा। इस रोज़ लोग मुख्तलिफ जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि इन्हें इनके अमाल दिखा दिए जाएं। बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो इसे देख लेगा। खौफ आया कि खुशी हुई? हज़रत आयशा तो घबरा गई थी इसको सुनकर। अल्लाह हमें भी फ़िक्र लगा दे। क्या करना है? ज़मीन के टुकड़ों को नेकियों का गवाह बनाना है। छोटे से छोटे अमल की भी फ़िक्र करनी है, नेकी करनी है, यकीन रखना है कि अमाल दिखाए जाएंगे। मुहासबा क्या है? क्या मुझे यकीन है कि मेरी नेकियां मेरे गुनाहों पे भारी होंगी? क्या मेरे छोटे गुनाहों की उस दिन पकड़ तो ना हो जाएगी? क्या मैंने ऐसे अमाल किए हैं कि ये ज़मीन मेरे हक़ में गवाही दे? इन सारी सोचों में रहते हुए अपने अमल की इसलाह करनी है।